गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोतर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गौर भक्त वृंद की। थोड़ा जोर से बोलिए जय। बोलो राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। बोलो गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा पार्षार्थी गौरनिताय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। शील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता यथारूप की। शील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महा महा मैराथन यज्ञ महोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदे सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। बैठो बैठो प्रभु बैसिए। तो ये जो भजन आप लोगों ने सुना इको कम करो भैया। बार बार छेड़खानी नहीं केवल आवाज ऊंचा करो और इको कम कर दो थोड़ा सा। ये भजन का अर्थ इस प्रकार से है। आवाज बढ़ाओ बेस कम करो थोड़ा सा। थोड़ा बेस कम करो BASS बास जो है। और आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। आवाज ऊंचा करो आवाज वाला। हरि बोल हरे कृष्णा। ठीक है हरि हरि। मैंने तो वृथा ही अपना जन्म गंवा दिया। सुदुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी मैंने श्री राधा कृष्ण जी का भजन नहीं किया। मैंने जानबूझकर सांसारिक विषय रूपी विष को खा लिया। ये संसार कैसा है पता है आपको? इस संसार को बताया है कारागार। क्या बताया गया है? ये जेल खाना है। और यहां पर जो भी आया है वो कैदी है। कैदी क्या है? गलती क्या की हमने? हम भगवान को साइड हटा करके उनको भूल करके हम इस संसार में क्या करना चाह रहे हैं? अपने आप को सुखी बनाना चाह रहे हैं। हमारी सबसे बड़ा मेजर गलती पता है क्या है? चाहे कोई भले ही मीट मांस भी ना खाता हो, चाहे कोई नशा भी ना करता हो, किसी का बुरा भी ना करता हो, फिर भी वो व्यक्ति भी जब तक भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक क्या होगा? कैदी ही है वो। तब तक सुखी वो भी नहीं हो सकता है भले ही वो बोले मैं तो बड़ा अच्छा हूं। तो सबसे अच्छे हम तब बनेंगे जब हम भगवान की शरण लेंगे। तो इसीलिए दैन्य प्रार्थना है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं हे प्रभु हे हरि। हरि क्यों बोल रखा है यहां पर? हरि का मतलब है जो हरण करते हैं, सभी प्रकार के पापों को हरण करते हैं। और जब आप भक्त बन जाओगे तो फिर आपके मन को भी हरण करते हैं। देना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना भगवान से, क्योंकि हम लोग अभी ईश्वरत्व, अभी हम क्या बन रहे हैं? नहीं नहीं मैं अपना मन कैसे दूं, क्यों दूं, उसको हम अपना मान रहे हैं ना। तो अभी दिया नहीं है, इसलिए यहां पर हरि आया है। हरि का मतलब ये मान के चलिए कि हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम हैं ही उनके। एक दृष्टि से हमने दिया ही क्या, उनका ही था। उनको अगर उनका धन या उनका मन अगर हम कुछ भी उनको दें, उनका ही था, केवल हमने रिटर्न किया, तो ये ईमानदारी है। ये ईमानदारी है, समझ रहे नहीं? ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और याद रखिएगा ज्यों ही हम भगवान की ओर को उन्मुख होते हैं, ज्यों ही आप इस सत्संग में आते हैं और सुनने लगते हैं भगवान की कथा, भगवान का संदेश, तो क्या होता है? हमारा सौभाग्य जग जाता है। हम सौभाग्यवान हो जाते हैं और हमारे दुख चले जाते हैं। सभी जितने भी वैरायटी वैरायटी कष्ट थे, बड़े बड़े रोग खत्म होने लग जाते हैं। सबसे बड़ा रोग तो मृत्यु का है। तो तो मृत्यु ही नहीं होती है फिर, है नहीं। तो इसलिए यहां पर बोलते हैं, हे हरि, मैं तो वृथा ही जन्म गंवा दिया मैंने। वृथा ही जन्म गंवाने का मतलब क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर के आपका भजन नहीं किया, संसार का भजन किया मैंने, संसार के जो झूठे बॉस हैं उनकी चमचागिरी की, उनकी मेहनत मजदूरी की, या हाथों को उनकी सेवा में लगाया, सर को उनके आगे झुकाया, यस बॉस यस बॉस। हम सभी किसी ना किसी की नौकरी कर रहे हैं, सच बात है कि नहीं, बोलिए भैया। हाँ जी, पक्का? मेरे को पूरा लाइट की वजह से सब दिखाई नहीं दे रहे हैं ठीक से। तो मैंने जानबूझकर सांसारिक विषय रूपी विष को खा लिया। संसार कारागार है, हम कैदी हैं, और यहां जितने भी ये जो सुख, जिसको हम सो कॉल्ड सुख कहते हैं ना, ये क्या हैं? ये सारे के सारे सुख जो हैं, ये विष हैं। संसार विषानले, इसमें हमको लग रहा है कि सुख हैं, ये सुख नहीं है, सब टेम्परेरी सुख हैं, और दुख देखे चले जाएंगे हम लोगों को, बड़ा बड़ा दुख देखे चले जाएंगे। और गोलोक का जो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, उसमें मेरी जरा से भी रतिमति नहीं हुई। हरिनाम संकीर्तन का मतलब क्या हुआ, कौन बताएंगे? ये हरे कृष्ण महामंत्र, बोलिए सब लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महामंत्र केवल इस संसार में नहीं बोला जाता है, ये गोलोक धाम की संपत्ति है। मतलब गोलोक वृंदावन में ये मंत्र जो है श्रीमती राधा रानी भी गाती हैं इसको, इस मंत्र को, इस मंत्र के थ्रू जो है भगवान का गुणगान होता है। तो गोलोक का जो प्रेम धन है, इसको प्रेम नाम कहा गया है। इस नाम से कृष्ण प्रेम आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे पास प्रेम नहीं है, लेकिन ये नाम में प्रेम है, और ये नाम ही स्वयं प्रेम है, भगवान स्वयं प्रेम के रूप हैं, और ज्यों ही हम उनको बोलते हैं तो हमारे भीतर प्रेम आने लग जाता है। रिवाइव कृष्णा कॉन्शियसनेस, ज्यों ही हरे कृष्ण माला हम माला जपने लगते हैं, नाम बोलने लगते हैं, तो क्या होने लगता है, हम होश में आ जाते हैं। ये कृष्ण को याद करना है, समझ रहे नहीं, ये होश में आना है। जो माला कर रहा है वही होश में है, बाकी सब विष खाने के लिए तैयार हैं, बेहोश हैं, बेहोश। तो बोलते हैं जो हरिनाम संकीर्तन है उसमें मेरी जरा से भी रतिमति नहीं हुई। रतिमति होलो ना को, थोड़ा सा भी रतिमति नहीं है, बाकी संसार में मेरी रति ही रति है। संसार की जो झूठी चीजें हैं उनमें क्या है मेरी, बोलो, रति का मतलब रुचि ही रुचि है। यहां हरि नाम में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हरि बोल। तो संसार रूपी विषानल से दिन रात मेरा हृदय जल रहा है, उसको शीतल करने का भी उपाय मैंने नहीं किया। अब हृदय जल रहा है, क्यों जल रहा है, रूट काज जानिए, असली क्यों हृदय जल रहा है। संसार विषानले, संसार दावा नलली ढलोक, धावा नल विष का नल, यहां जहां से देखो कष्ट की ही न्यूज आ रही है, क्योंकि ये दुखालय है, ये कष्टालय है। क्यों ऐसा बना रखा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हे जीव, तू इस संसार का नहीं है, तू तो आध्यात्मिक है और तू मेरा अंश है, और तेरे को मेरे संग रहने की आदत है, हमेशा आनंदमयोभ्यासात। आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है, आनंदमयोभ्यासात है, आनंद में रहना। लेकिन हम 24 घंटे यहां दुख में रह रहे हैं, क्यों दुखी हैं बताइए, इधर से कष्ट, आधी दैविक कष्ट, देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट, भूकंप, ये ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी, और इसी संसार के जीवों के द्वारा दिए गए कष्ट, कोई गाली दे रहा है, कोई हमको पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई नीचे गिरा रहा है, सब तो नीचे गिराने की सोचते हैं ना। आप दुखी हैं तो वो सुखी हैं संसार के लोग, क्योंकि ये बीमार अवस्था है। एक बीमार व्यक्ति दूसरे को सुखी नहीं देख सकता है, कभी भी देख सकता है, बीमारी है, वो सोचता है कैसे हंस रहा है, ये कैसे खेल रहा है। किसी ना किसी पर जितना समय हम लोगों को गिराने में लगाते हैं, अगर उतना भजन करने में लगा दें तो हमारा जीवन, बोलो, जितना उल्टा सोचने के लिए लगाते हैं उतना सुलटा सोच लें अगर, समझ रहे नहीं, तो पॉजिटिव थिंकिंग से हम इस संसार से निकल सकते हैं, निकलना है इधर से। और ये सच में ये संसार हमारा रहने लायक स्थान नहीं है, क्योंकि ये संसार, हम इस संसार के हैं ही नहीं, ये जड़ जगत है, ये हमेशा रहेगा, जैसे तिहाड़ जेल हमेशा रहेगी। क्योंकि सरकार को पता है बदमाश निकलेंगे ही निकलेंगे, चून को कितना ही गीता के प्रवचन दे दो, कितना ही भागवत प्रवचन दे दो, कितना ही रूल्स रेगुलेशन टेलीविजन समाचार में आते रहें, फिर भी वो तोड़ेंगे। इसलिए जेल भी हमेशा रहेगा, ये जड़ जगत भी हमेशा बना रहेगा, हमेशा रहेगा ये। तो ये चिंता ना करें संसार की, हमें अपना निकलना है। और जो राधा कृष्ण बोले संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। जो संग में चलना चाहता है, जो फॉलो करना चाहता है, उसको साथ ले चलो। बाकी जो नहीं जाना चाहते हैं, हम पूरा प्रयास है हमारा सब चलें। क्या भगवान की इच्छा नहीं? बताइए, भगवान जबरदस्ती हमें इस संसार में रखे हैं? बोलो, हमारी इच्छा है संसार में रहने की। हम नहीं जाना चाहते हैं भगवान धाम, हम नहीं अपने को मुक्त करना चाहते हैं, हम सुखी नहीं होना चाहते हैं, हम आनंद नहीं लेना चाहते हैं। हम यहां पर थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा परमानेंट अपने नाम का घर हो जाए, हम सोचते हैं बस अब सुख मिल गया बस हमको। लेकिन उसको भी छोड़ना है एक दिन, 60 साल 70 साल में, और फिर पूरे जीवन भर मन जहां रहा अगला जीवन, फिर मां का गर्भ का कष्ट, फिर ये कष्ट, फिर शादी, फिर कमाओ, फिर नौकरी की चिंता, अगर मनुष्य भी बन गए तो। तो यहां तो ये सर्किल चलते ही रहेगा। तो बुद्धिमान, सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो भगवान के लिए समय ही समय निकालता है, वही धनवान है, याद रखना। सबसे धनी व्यक्ति वो है जिसके पास भगवान के लिए समय ही समय है, सच में वही धनी है। तो यहां पर जो है आगे बोलते हैं कि मैंने शीतल करने का कुछ उपाय भी नहीं सोचा, और जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है वही सचिनंदन गौरांग रूप में अवतीर्ण हुए हैं, तथा बलराम जी नित्यानंद प्रभु हो गए हैं। जितने भी दीनहीन थे सभी का इन्होंने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उद्धार कर दिया। दीनोहीनो जातो छिलो हरिनामो उद्धारी लो, इस बात के गवाह जगाई और मधाई हैं। हे नंदन श्री कृष्ण नंद नंदन, आप वृषभानु सुता श्रीमती राधा रानी के साथ एक बार मुझ पर करुणा कर दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने इन अरुण वर्ण चरण कमलों से दूर मत करना, आपके बिना मेरा और है ही कौन। ये उस भक्त का रियलाइजेशन है जिसको ये जड़ जगत समझ में आ गया, जो होश में आ गया है। सच बता रहे हैं, जो सवेरे जल्दी उठ करके अपना माला पूरी कर लेगा वो होश में रहेगा, क्योंकि सुबह का समय बड़ा सात्विक होता है, समझ रहे नहीं, उसी वक्त आलस भी आता है। अगर हम माला कर लिए 16 माला, आप देखना पूरे होशोहवास में पूरा दिन अच्छा जाएगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, और पाप में नहीं लग सकते हैं, फिर हम गलत भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, याद रहेगा और रियलाइजेशन रहती है, भगवान की अनुभूति हृदय में रहती है। तो इसलिए हमारा पहला काम है कि हमारा नाम पूरा हो जाए, मेरी माला कंप्लीट होए, भगवान के लिए भगवान के दर्शन होए। तो ये जो है सबसे जरूरी काम है, ठीक है। तो आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए और मेरे बाद में बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। श्रीमद् भगवद गीता जो जो लोग लाए हैं वो देख सकते हैं, अध्याय 6 श्लोक नंबर 24 है। पिछली दफे आप लोगों ने 20, 21, 22, 23 नंबर सुना था और अध्याय का नाम है ध्यान योग और श्लोक इस प्रकार से है, तीन पैरा हैं श्लोक के। तो बोलिए फिर भी आप लोग, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विणम चेतसा संकल्प प्रभावान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनः सर्वेन्द्रिय ग्रामम् विनियम्य समन्ततः। तो आप लोग संधि विच्छेद दोहराइए, सह उस निश्चयेन दृढ़ विश्वास के साथ योक्तव्यः अवश्य अभ्यास करें, योगः योग पद्धति अनिर्विण चेतसा विचलित हुए बिना संकल्प मनोधर्म से प्रभवान उत्पन्न कामान भौतिक इच्छाओं को त्यक्त्वा त्याग कर। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, इसको दोहराइए, सर्वान समस्त अशेषतः पूर्णतः मनसा मन से एव निश्चय ही इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को विनियम्य वश में करके समन्ततः सभी ओर से। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद महाराज की। आप लोग बोलिए पीछे से, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरअपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तो तात्पर्य को भी और श्लोक को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे हैं। तो यहां पर भगवान जो हैं योगाभ्यास की चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। तो गीता के तीन विभाग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो शुरू के एक से लेके छह तक जो हैं क्या हैं, कर्मयोग हैं। कैसे अपने कार्यों को, कर्म का मतलब अपने कार्य, अपने कार्यों को हम योग बनाएंगे। योग का मतलब जोड़ना, हम भगवान से जोड़ देंगे। क्या क्या कार्य हैं हमारे, रात को सोने से लेकर सवेरे उठने तक, उठने से लेकर के रात को सोने तक जितने भी कार्य कर रहे हैं हम, यत करोषि यदस्नासि, तुम जो कुछ करते हो, सिंपल सा बात, उस सबको किससे जोड़े हम, भगवान से जोड़े। इसी को योगाभ्यास कहा गया है, योग, योग अभ्यास। योगाभ्यास का मतलब योग का अभ्यास करना। तो यह अभ्यास कैसे होगा, हम हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, उठते ही जो है हमको क्या चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए। एक तो लेट उठते हैं, पहला तो ये ठीक करना है। योगाभ्यास सिंपल तरीके से बता रहे हैं हम आपको है। प्रत्येक व्यक्ति जिसको भगवान की कृपा चाहिए वो कैसे योग करेगा, उठने से उसकी जिंदगी शुरू होती है। सबसे पहले तो जल्दी उठे, शास्त्रों में बता रखा है सीधी भाषा में, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठना चाहिए 4 बजे। कितने बजे उठना चाहिए? और जो रोगी है, हम सब क्या हैं बताइए, रोगी हैं। ऐसा नहीं कि ये तो ब्रह्मचारी और सन्यासी लोगों का काम है, ये तो फुल टाइम डिवोटियों का काम है कि वो लोग उठें। हम तो प्रभु जी काम धंधे वाले हैं, ये बात नहीं चलेगी। मैं कड़क, अभी डॉक्टर जो है कड़क बात, अभी सीधा ये आपके हित की बात बता रहे हैं सीधा। अगर इसी जन्म में धाम जाना है तो उसके लिए सुन लीजिए, कैसे धाम जा सकते हैं हम इसी जन्म में, जिसको दोबारा जन्म नहीं लेना है उसके लिए ये बातें हैं। बाकी जिनको बार बार जन्म लेना है तो फिर 9 बजे भी उठ सकते हैं, 8 बजे भी उठ सकते हैं, उठे ही नहीं वो भी कर सकते हैं। सच बात है। तो उठें, उठते ही न्यूज़पेपर ना मांगे हम, उठते ही कुकुर को ना ढूंढें कि कुत्ता कहां मिलेगा, कुत्ता को ले जाएं पार्क जी, उठते ही माला लें, ठीक है कि नहीं। उठते ही सबसे पहले हमें पृथ्वी में प्रणाम करना चाहिए, भगवान का सामने फोटो होना चाहिए, उनमें प्रणाम करना चाहिए, हे प्रभु मेरा मन आप में लगे, बदमाश मन जो है आप में लगे, उनको प्रणाम करके, पृथ्वी माँ को प्रणाम करके, जिस पे दिन भर चलने वाले हो, धर 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 गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और पैरों से चल रहे हैं, थूक रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पृथ्वी माँ अगर बोल दे कि भैया मैं यहां खसकने वाली हूं, सारा पैसा रख, हम सच में अपनी जिंदगी बचाने के लिए सारा बैंक से निकाल के पैसा दे देंगे घूस, मां खसकना मत बस। सच बात है, कुछ नहीं मांग रही है पृथ्वी मां, केवल प्रणाम कर दो, ये इतनी इज्जत तो दे दो, सारा अहंकार दूर हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहला ये योग है, ऐसा करके कैसेट चला दो, कैसेट चलाने की डालने की जरूरत भी नहीं, आजकल 250 रुपए का मिल जाता है, चला दिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। दूसरा सुनना है जय राधा माधव, प्रभुपाद जी की धुनें चलती रहती हैं, आपको केवल इतना करना है उसको, ये योग है, सिंपल सा बात, ये गृहस्थ हो चाहे जो भी हो, आप नहा रहे हैं लेकिन जप चल रहा है, आपको अगर प्रवचन सुनना है तो प्रवचन चला दो, गुरु महाराज जी का चला लो, जिस भी भक्त का आपको पसंद हो, जैसे भी हो, आप सुनिए बस, हो गया, चला दीजिए, ठीक है। और आप नहा रहे हैं, देखिए आप नहा रहे हैं लेकिन किस लिए, अब जप करना है, ये शरीर भगवान का है ये मानना, ये शरीर भगवान का ही है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए फ्रेश हो रहे हैं एकदम, हम नहा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, हरे कृष्ण सर, वहां भी बोलिए हरे कृष्ण छोड़िए नहीं। तो ऐसा करके ये योग हुआ, भगवान से जुड़े हुए हैं आप, कनेक्टेड हैं बिल्कुल एकदम। और नहा करके फिर क्या कीजिए, तिलक लगाइए अपने शरीर में, 12 तिलक जो हैं उसको ऊर्ध्व पुंडे से करके लगाना चाहिए, ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः, ये शरीर कृष्ण का है। अब उनको प्रणाम करने जाएंगे स्वच्छ होकर के, तुलसी माँ को जल चढ़ाने जाएंगे, है नहीं, ये है सवेरे का पहला काम। ये नहीं कि उठते ही ऐसे कैसे आंखें मीच करके, आजकल सवेरे उठते ही लोग किचन में जाते हैं, कुछ रखा हुआ है शाम का, देखो उठे नहीं, वो भूख पहले शुरू हो गई उनकी, कुछ नमकीनी हड़स लें, कुछ इधर से वो हड़स लें, बस हो गया, कहां योगाभ्यास हुआ बताइए, भोगाभास क्या हुआ, भोगाभ्यास, भोग अभ्यास, सवेरे से ही भोग भावना शुरू हो गई, समझ रहे। तो आगे अच्छा कर रहा है, करते रहो, योग में लगा हुआ है वो भी, उधर चंचल रहेगा ना, इधर अच्छा है उसका, हारमोनियम बजाते अभी से अभ्यास चल रहा है। तो इस प्रकार से बाहर आकर के तिलक लगाना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, भगवान को प्रणाम करना है, पूरा दंडवत प्रणाम करना है, और अगरबत्ती लगा के भगवान, इसीलिए शुरू शुरू में हम लोग फोटो ही रखवाते हैं लोगों से, अभी डीटीज मत लाओ बोलते हैं अभी, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, बोलेगा प्रभु जी मुझे डीटी, अभी माला करने का अभ्यास करना है, अभी पहले जस्ट फोटो रखिए, गुरु गुरांग की फोटो, राधा कृष्ण की फोटो, अपना ऑल्टर का फोटो, तुलसी महारानी, बट दैट्स ऑल, अगरबत्ती लगाई आपने, दीप जलाया, प्रणाम किया, तुलसी की जी की प्रदक्षिणा की और उनमें जल चढ़ाया और माला करने बैठिए, क्योंकि बाद में माला नहीं हो पाएगी, गृहस्थों से अभ्यास नहीं हमारा, सच बात है, सीधा माला कीजिए बस, वो 5 साल जब माला का अभ्यास हो जाए फिर गुरु महाराज से पूछ करके फिर भगवान की मूर्ति लाना, चाहे गौर निताय लाएं, चाहे शालिग्राम लाएं, चाहे राधा कृष्ण लाएं, लक्ष्मी नारायण लाएं, क्योंकि फिर हमारा, हम कर सकते हैं दोनों चीजें, नहीं तो अभी तो फिर उन्हें तो कंफ्यूज रहते हैं लोग एकदम, प्रभु जी क्या करें बताओ, 1.5 घंटा 1 घंटा उसमें बीत जाता है, फिर 7 बज जाते हैं, फिर बच्चों को भेजना हो जाता है, तो अभी फोटो रखिए केवल, ठीक है, भगवान का इस ढंग से पूरा। और उसके उसके साथ साथ क्या करें, जब आप जप कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी का चंटिंग बॉक्स, अगर आप छत में भी जा रहे हैं तो छत में जो है, छत में वॉकिंग भी कर सकते हैं आप, 100 राउंड लगाइए, 2 किलोमीटर हो जाएगा पूरा, ठीक है कि 200 राउंड लगाओ, आठ माला करो, पूरे राउंड लगाते करो, आपका वॉकिंग भी हो गया और साथ में क्या हो गया, और जो पास में रहते हैं मंदिर के वो तो मंगल आरती से आ जाओ, वो लोग मंगल आरती से यहां आ जाओ मंदिर में, सब कुछ मिलेगा उनको, बना बनाए भक्ति का अभ्यास कैसे करना है करके, भक्तों का संग भी मिलेगा। और फिर इस प्रकार से चाहे गृहिणी हो चाहे कोई भी हो, आप 7 बजे क्या कर सकते हैं, भगवान का जो है गुरु पूजा गोविंदम आदि पुरुषम लगा करके बच्चों को भेजना है, अपना नाश्ता वास्ता तैयार करके उसको भोग लगा करके बच्चों को भेजिए स्कूल। लेकिन आपका कैसेट चल रहा है, देखिए आपका मन वही है, फिर जो है सब बच्चे चले गए, आपने क्या करना है, आप प्रवचन सुनिए, 1 घंटा भागवत सुनिए, नहीं सुन रहे हैं तो भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए घर में। तो ऐसे अभ्यास अगर आप करेंगे, ऐसे करके आप ऑफिस में जाने तक, ऑफिस में जा रहे हैं, दूर ऑफिस है, गाड़ी में भी चल रहा है आपका, या उसमें माला कंप्लीट हो रही है, समझ रहे नहीं, तो ऐसे करके ऑफिस में भी जाएंगे तो वहां पर भी, जहां ऑफिस में गए वहां भी ठाकुर जी का फोटो है, आप वहां भी नमन करके अपना जो भी आपकी कार्य है उसको कीजिए, चिंतन आपका प्रभु का जा रहा है। ऐसे करके घर आने तक संध्या वंदनम, फिर शाम को संध्या आरती का जल्दी आ जाते हैं। पहले लोग 8 घंटा 6 घंटा कार्य करते थे, बहुत होता था, आजकल 12-12 घंटा 14-14 घंटे कार्य करते हैं ना, इसलिए योगाभ्यास कहां, वो थका हारा घर आता है, और घर आकर के क्या होता है, पत्नी भी घर आती है ऑफिस से, पति भी घर आता है, तो दोनों जो हैं एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, न एक दूसरे से बात कर पाते हैं, रोटी खिलाना तो बहुत दूर की बात है, ब्रेड ब्रेड ला करके फिर वो जैम वैम लगा करके उसको खा लो जी, सूखा हुआ कभी, और या फिर कभी बोलते हैं चलो बाहर होटल में खाते हैं, फिर वहां 12-12 1-1 2-2 बजते हैं, फिर सवेरे 10 बजते हैं। तो योगाभ्यास नहीं होता है हमारा, योगाभ्यास का ये तरीका है, तो मैं ये सिंपल में हाईलाइट किया आपको। तो ये योगाभ्यास करने से क्या होगा, जब आप ठीक से जब दृढ़ संकल्प लोगे और श्रद्धा के साथ में कि ये साधारण चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं, इतना करने से आपका मन जो है देखिएगा पूरा भस्म होने लगेगा। हम लोग अपनी बातें बताते हैं, शुरू शुरू में मन नहीं लगता था, जब 1-2 साल हुए थे बहुत सवेरे सवेरे भूख लग जाती थी, क्योंकि अनियमित जीवन था ना, बहुत कुछ होता था, लेकिन धीरे धीरे लगे रहे उसमें, तो भगवत कृपा से आज उसके बिना तो गाड़ी चलती ही नहीं, अगर थोड़ी देर कुछ नहीं हुआ तो ऐसा लगता है क्या नहीं किया क्या नहीं किया। तो हर चीज संभव है अभ्यास के द्वारा, आपका मन भी कहां कहां से एकदम बस में हो जाएगा पूरे, जैसा आप चाहो, समझ रहे नहीं। सच बताएं आज हम लोग संसार के बिल्कुल नहीं रह गए, अब मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर हम लोग जैसे बीच में हम ट्रेन में गए थे इलाहाबाद, तो क्योंकि अब सेकंड क्लास यानी कि स्लीपर का डब्बा, लेकिन सब बीड़ी सिगरेट, कोई मना तो धूम्रपान करना मना है लिखते हैं, लेकिन इतनी गंदगी फैलाए रहते हैं, इतनी बातें करेंगे, इतना दिमाग खराब, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब अपना कोई पी रहा है, कोई उपन्यास पढ़ रहा है, चाय ले लो। सही में हम लोग मतलब बिल्कुल, फिर मैं वापस आते समय 3 टायर AC में करके लाया शांति में एकदम, मतलब कहने का मतलब बाहर के रह ही नहीं गए अभी बिल्कुल। एक दफे एक भक्त जो है यानी कि बाहर की गाड़ी में लेके गया, उसने पूरे AC चला रखा था, बंद किया था, अब उसमें हजारों लोग जाते हैं, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, गंदगी सब, ऐसा दिमाग, ऐसा मतलब सर चढ़ गया, वो बदबू अंदर जो बदबू थी, दिमाग खराब हो गया एकदम, नहीं एडजस्ट कर पाएंगे बाहर में बिल्कुल भी, ऐसी आदत हो गई, क्योंकि हम लोग सीधा मंदिर आ रहे हैं, वहां अगरबत्ती जल रही है, मंदिर 2-2 3-3 दफे धुल रहा है, स्वच्छ वहां हरिनाम हो रहा है, टाइल्स में मुख देख सकते हो अपना, इतना स्वच्छ बिल्कुल, वैसे ही घर का वातावरण वैसे, तो बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों का संसार में एडजस्ट करना, क्योंकि वहां तो लोग कहीं पर भी बैठ जाएंगे, पता चला टॉयलेट गए बाहर ऐसे ही आ गए, कोई पूरे कपड़े समेत ही बाहर आ गए ऐसे ही, कोई नहाना नहीं कुछ नहीं, कितनी अपवित्रताएं हैं संसार में, बहुत ज्यादा। तो योगाभ्यास करने वाले को प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे, अंत में उसकी सफलता निश्चित है, उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, ऐसा दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए, आपको जो बोल रखा है, बाकी का काम भगवान का है। भगवान अपने आप शुद्ध करेंगे, अपने आप फल देंगे। आप गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, आपको भले ही ना लग रहा हो। अब हम लोग फल का मतलब क्या सोचते हैं कि हजार हजार की नोटों की गड्डी मिल जाए, ये फल है हमारे लिए। इतने साल से भजन कर रहा हूं, क्या हुआ मेरा? वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे को आत्मा की शांति कितनी मिल रही है। मैं अपना अगले जीवन का पूरा आप भगवान, क्या बोलते हैं, आपका मन भगवान में लग रहा है, अगला जीवन कितना अच्छा होने वाला है। और किसी को धन भी चाहिए तो भगवान बोलते हैं आने वाले जन्म में मैं क्या करता हूं उसको, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, उसको उच्च कुलों में जन्म देता हूं जहां धन की किल्लत नहीं होती है। और माता पिता भक्ति करने को भी मना नहीं करते हैं, भक्ति में भी लगाते हैं, वहां धन की किल्लत नहीं होती। मतलब ऐसा योग भ्रष्ट अभी जायते, जिसकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, भगवान उसको इतना सुविधा देते हैं, मनुष्य जीवन देते हैं, ऐसे घर में जन्म देंगे जहां धन की किल्लत नहीं होगी और माता पिता भक्त होंगे जो आपको शुरू से ही भक्ति में लगाएंगे। अब क्या चाहिए बताइए? मनुष्य जीवन मिल गया, भक्ति मिल गई, और साथ में क्या हो गया, धनी कुल में जन्म मिल गया। अब क्या चाहिए? ये जो अभ्यास करोगे आप, ये यहां भले ही लगे कि नोटों की गड्डी मेरे को नहीं मिल पाई, ये नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर भी मिलती है। भगवान जो है अपने भक्त का, शिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते मेरे भक्त का किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता है, गारंटी है। जैसे कल ही मैं सवेरे, हम लोग 3 बजे से आए थे, मैं 5 बजे घर को जा रहा था, तो अद्भुत प्रभु जी मेरे को मिल गए और वो पकड़ लिए। बोले प्रभु जी, वो जो सवेरे आपने कथा की थी, तो हमारे मिर्जापुर से प्रभु जी हैं, उनको कुछ बात करनी है। तो मैंने वहां पर बताया था कि एक जो है लेडीज आई थी भोपाल से कथा में, और वो बड़ी पीड़ित थी, बहुत दुखी थी, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, पतड़िया निकल गई बाहर, हॉस्पिटल में था, और पति कुछ कमा नहीं रहा था। तो यहां आई शीशगंज गुरुद्वारा में रहने लगी वो, यहां सोनिया जी के वहां भी गई, तो उसने भी कुछ मदद नहीं की, इतनी दुखी। तो वो यहां मंदिर किसी ने भेजा होगा, तो वो रिसेप्शन वाले ने मेरे हमारा फोन दे दिया उसको, कि भगवान भेजते हैं ना, उस ढंग से कहां से किसको मदद मिल पाएगी। तो उसने फोन दे दिया, तो मैंने कहा मैं तो अभी बाहर हूं, मैंने रिसेप्शन वाले से बात करा के मैंने कहा साधु हृदय प्रभु जी से बोलो कि वो इनको ठहरा देंगे। तो अगले दिन, वो संडे था, अगले दिन क्लास भी सुनी पूरी उन्होंने नीचे, उसके बाद ऑफिस में आकर के वो रोने लगी। मैंने कहा रोइए नहीं, उनको मैंने कहा जाने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं, 100 रुपए दिए, मैंने कहा शीशगंज वापस जा सकते हो, लेकिन आप क्या करो मेरे पास, क्योंकि ऐसा धन तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़े धनी व्यक्ति जरूर है मेरे पास में, जो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर तुम उनकी शरण ले लोगी, क्योंकि सबने हाथ धर दिए ना, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यही तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो है मेरी शरण में आओ, मैं गारंटेड। और हमने उसको गीता दिया, मैंने कहा ये गीता मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूं, ये 100 रुपए लीजिए, और माला, मैंने कहा इसको ऐसे करना है, आपने करना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। और वो इस हफ्ते आई थी, वो इस हफ्ते पूरा सत्संग, मेरे को ध्यान भी नहीं था, वो बैठी है करके, तो लास्ट में बोलती मैं कुछ बोलना चाह रही हूं, तो बोलती है प्रभु जी मैं गीता मैंने पढ़ी और माला करने लगी, 80,000 रुपये फोन आया है कि वहां से सहायता मिल गई है, ये अभी की घटना है। तो मैंने कहा, अब ये कथा मैंने सुनाई थी, तो वो मेरे को सुनाना चाह रहे थे कि प्रभु जी हुआ क्या कि 60 लाख रुपए, दो पार्टनर थे मिर्जापुर में, 60 लाख रुपए उसने क्या किया, अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए पार्टनर ने, जैसे तैसे साइन वो करके। अब बड़ा मुश्किल में ये, इसने लोन लिया था, दूसरा पार्टनर जो है उसका अपने में कर लिया इसने, पार्टनर ने भी, ये बहुत दुखी। अब 60 लाख बहुत होता है भाई, 60 लाख तो ये जो है इस बिल्कुल रोग को आ गया था, एकदम रो रहा था। तो सारे प्रयास टोटके उठके बाबाओं के चक्कर सब लगा दिए इसने, वो मेरे को बताने के लिए बुलाए वहां पर, उसके बाद घर गए हम। तो ये बता रहे थे कि प्रभु जी क्या हुआ, उसके बाद मैंने जो है, मैंने उनको बोला, मैं अद्भुत प्रभु को जानता था, तो मैंने कहा उनको जो है आप कम से कम इनसे बात हुई, तो इनने बोला डिटेल तो भेजो, उसका नंबर तो भेजो, मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा या कुछ भी उसको बोलूंगा कि भाई तुम दे दो, नहीं तो। तो बोले यहां से हमने उसका नंबर और ये सब डिटेल इनको भेजी, और वहां क्या हुआ बोलते हैं, ये तो बिल्कुल इसको कोई विश्वास नहीं था, इसने 10-15 दिन तो डिटेल भेजी नहीं, मैं बार बार बोलते रहा, भेजा कि नहीं भेजा तुमने उसका नंबर? बोलते हैं प्रभु जी इतने महीने हो गए, मैं इतना चक्कर कर लिया, अब वहां से क्या होने वाला, वो साधु लोग क्या कर पाएंगे। तो बोलते मैंने बोला तुम भेजो तो सही। तो जब यहां केवल अभी इन्होंने लेटर खोला भी नहीं, इन्होंने यहां केवल अर्जी आई है, ठीक है कि नहीं, वहां क्या हुआ कि पता नहीं कैसे इसके, पता नहीं वो डर गया क्या हुआ, कैसे ट्रांसफर हुए, इसने देखा कि इसके जो अकाउंट है उसमें 60 के 60 लाख जो हैं वापस आ गए। दरअसल वो जो चेक था वो वहां भुना, वो मतलब गया ही नहीं उसके में, उसने ले तो लिया था ठीक है, लेकिन वो क्लियर हुआ ही नहीं था बल, और इसके इसके उसमें वापस आ गए। तो अपनी बात बता रहा था, देखो कि अभी यहां ज्यादा अर्जी लगाई भी नहीं हमने, केवल अर्जी भेजी थी, और मैंने और उस व्यक्ति ने तो यही बोला ये केवल भगवान की कृपा है, आपने ठीक कहा था, कम से कम अर्जी भेजो तो सही, वहां 60 लाख वापस आ गए, 60 लाख। तो ये एक घटना नहीं है, इसमें ताली बजाने की बात भी नहीं, विश्वास की बात है, ऐसे करोड़ों घटनाएं हैं, हर भक्त अपनी बात, ये सब भगवान की कृपा से संभव है, नहीं तो संसार जटिल है, महाजटिल, क्योंकि यहां लोगों की जो बुद्धि, कुरकुटिया बुद्धि है ना, कुरकुटिया बुद्धि बोलेंगे उसको, एकदम बिहड़ बुद्धि, तो उसमें उल्टी चीज के अलावा सुलटी चीज कभी आती ही नहीं है, समझ रहे नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार जो है उल्टी चाल, चाल पे चाल, चाल पे चाल, चाल पे चाल, अच्छाई को भी बुरा लेते हैं लोग। लेकिन अगर हम भगवान की शरण ले लेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, याद रखना, वो मात पे मात, मात पे मात, मात पे मात खाते जाएगा, गारंटी है सुधरना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात अरिष्यसि, अतः चेत्व अहंकारानाम श्रोष्यसि विनश्यति। अगर मेरा कहा कहां मानोगे, जैसा मैंने बता रखा है उस हिसाब से चलोगे, तो मेरे प्रसाद से तुमको क्या होगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर कहा नहीं मानोगे, मनमाना चलोगे और अहंकार से गर्वित रहोगे, झूठा मतलब झूठा जीवन बिताओगे, तो विनष्ट हो जाओगे। अपने ही कर्मों से क्या हो जाते हैं हम लोग, विनष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये संसार में भी जरूरत पड़ती है उत्साह की, और एक निश्चय और धैर्य होना। धैर्य मतलब अनेक चीजें, यहां ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, लेकिन हम अपने पथ से विचलित ना हो, हमारे जो असली कार्य, ठंडी आ गई तो पता चला हमारी साधना बेकार हो गई, अति गर्मी आ गई तो साधना में इफेक्ट पड़ गया, गरीबी आ गई तो माला छूट गई। भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि धैर्य का मतलब है आप किसी भी अवस्था में माला नहीं छोड़ना है, किसी भी अवस्था में साधु संग नहीं छोड़ना है, मेरा दर्शन करना नहीं छोड़ना है, यह है धैर्य। यहां तो चलती रहेंगी बड़ी उथल पुथल, ठीक है कि नहीं, सुखे 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 कृत्वा वह ना लाभा लाभो जया जयो, कि लाभ में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हम अपने जो कर्तव्य है हमारा, जो भगवान ने हमको ड्यूटी दे रखी है, उससे विचलित ना हुए, वो व्यक्ति जो है योगाभ्यास में दृढ़ है। अगर हम ये छोटी छोटी घटनाओं से, चीजों से, किसी के तिरस्कार से अगर हम विचलित होने लगे, हम लोग होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए, अरे छोड़ो सब बेकार है, तो इन जितना ज्यादा यहां तिरस्कार मिल रहा हो ये सोच लेना चाहिए कि प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है, मेरे को जगत का रूप समझा रहे हैं, ये प्रभु का नहीं बन पाया तो मेरा कैसे बनेगा, समझ रहे नहीं, तो ये कृपा है, इस कृपा से हम भगवान में और मन लगाएं अपना और यहां से निकले आगे। आगे क्या बता रहे, निश्चय का मतलब मनुष्य पूर्ण हार्दिक धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन, भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने और सत कार्यों को पूर्णतया लगे रहने में कर सकता है। और संकल्प की बात के लिए प्रभुपाद जी यहां पर एक गौरैया का आदर्श उदाहरण दे रहे हैं कि जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे, उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में, सारे के सारे क्या हो गए, अंडे जो हैं समुद्र, तो समुद्र की लहरें आती रहती हैं, समुद्र ने ले लिए, समेट लिया, और इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई, बड़ा दुखी हो गई, उसने भी समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा कि मेरे अंडे लौटा दो, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली, ठीक है तुम मेरे अंडे वापस नहीं दोगे, गौरैया बताओ और समुद्र को सुखाएगी, लेकिन निश्चय तो देखो कितना बड़ा उसका, इतनी छोटी गौरैया। और क्या हुआ, वो अपनी नन्ही सी चोंच से पानी को वहां से फेंकने लगी बाहर, पानी फेंक रही है, ले जाकर के पानी फेंक रही है, सुखा दूंगी मतलब। तो ये जो है क्या है, इसको बोलते हैं निश्चय, एकदम पूर्ण निश्चय। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे, सब मजाक करने लगे, देखो सब हंस रहे हैं, देखो ये क्या पागलपन है, तुम क्या समुद्र को जो है, तुम मर जाओगी, तुम अनंत जन्मों तक समुद्र को सुखा नहीं सकती हो। तो सर्वत्र चर्चा होने लगी इस कार्य की, गौरैया ने समुद्र को सुखाने के लिए प्रण ले रखा है और कर रही है वो, तो सब देखने के लिए वहां आ रहे हैं। अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी तो उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आ गई और वे गौरैया से मिलने आए और गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। अब गरुड़ जी जो हैं, अगर ऐसा बोल दें कि मैं सुखा दूंगा तुमको तो क्या होगा, गरुड़ जी में पूरी ताकत है, भगवान के सेवक हैं। तो इससे समुद्र जो है क्या हुआ, भयभीत हो गया, उसने अंडे लौटा दिए और वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई, समझ रहे हैं। तो भगवान जो है गरुड़ के द्वारा, भगवान हर भगवान इसी संसार में, याद रखिएगा, इसी संसार में लोगों के मन मन के भगवान ऐसे मन में बात डाल देते हैं। हम अगर इतने बड़े भक्त नहीं, स्वयं भगवान नहीं आए तो कैसे काम कराना है भगवान को पता है, किसी ना किसी प्रकार आपका कार्य हो जाएगा आपको से, और वो भगवत कृपा ही है। और ये आप लोगों ने देखा होगा, हम क्या कर सकते हैं बताओ, कितनी दफे, हजारों हजारों दफे जो आपके काम सब बने हैं, अभी तक भी जो बन रहे हैं वो किसकी कृपा से बन रहे हैं, भगवान की कृपा से ही बन रहे हैं, माध्यम जीव को बनाते हैं भगवान। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। सवेरे 4 बजे उठना, फिर माला करना, माला में मन लगाना, 16 माला में एक जगह बैठो या घूम के जैसे भी माला में मन लगाना, कहां मन लगता है बताइए, है कि नहीं। तो ये योग है भगवान से जुड़ना है, ये दुष्कर लग सकता है हमें कि बड़ा कठिन है ये, लेकिन किंतु जो कोई भी संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। वो कहते भी है ना, क्या नियम जो है प्रभु से मिलाता है। जैसे एक व्यक्ति ने नियम क्या रखा था, वो शिवजी का भक्त था, वो बिना उनको खिलाए जो है, नहीं बिना उनके ऊपर जल डाले, जल नहीं डंडा, उनको डंडा मारता था, वो एक डंडा मारता था और उसके बाद क्या करता था बोलिए, खाना खाता था। प्रतिदिन उसका नियम था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था कुछ, इसलिए वो डंडा मारता था। एक दिन तूफान आया तो जितने भी शिवजी के भक्त थे वो शिव मंदिर नहीं गए, बोला कि आज तूफान है कल जाएंगे। लेकिन उसका क्या हुआ, उसका नियम इतना पक्का था, उसको याद आया जब भोजन करने लगा, अरे मैंने डंडा नहीं मारा, तो शिवजी के यहां गया और शिवजी को जो है डंडा मारने के लिए तैयारी हुआ, शिवजी प्रकट हो गए, बोले भाई बहुत डंडे खा लिए, ठीक है कि नहीं। शिवजी प्रकट हुए, बोले तो इसने बोला, शिवजी ने बोला कि तुम्हारा नियम इतना पक्का है कि तुम जो है तूफान में भी मेरे को डंडा मारने के लिए आए, तो नियम से प्रभु मिलते हैं, समझ रहे नहीं। हमारा नियम चाहे और काम होए ना होए, 16 माला मेरी पूरी होए, तो भगवान याद रखते हैं। देखो इसने, आप भगवान को याद करोगे, भगवान आपको याद नहीं करेंगे, भगवान को पूरा याद है, आप कब माला छोड़े हो, कब करे हो, कितना मस्ती मारे हो, कितना क्या किए हो, सब पता है, सारा कुछ, कितना आलस किए हो, सारा पता है। तो जिसने जितना गुड़ डाला है उतना उसको मीठा मिलेगा, हमारी हमारी हमारे ईर्ष्या द्वेष से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। हो सकता है कोई पतला सा व्यक्ति हो, करोड़पति हो, आप देखो करोड़पति बन गया, तुमको क्या पता उसने कितनी मेहनत कर रखी है, आप सोचते मैं मोटा हूं मुझे करोड़ों रुपए मिलना चाहिए, कहां से मिलेगा नहीं मिल सकता है। तो जिसने निश्चय के साथ में, उत्साह के साथ में भक्ति की है उस व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो हैं, अपने दिव्य ग्रंथों का, दो मिनट और लूंगा आपका, उसके बाद विराम देंगे। प्रभुपाद अपने ये ग्रंथों को वितरण के लिए, जैसे कि आप लोगों में से कितने लोग भगवद गीता वितरण कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं कृपा करके उनसे भी निवेदन है कि ये महीना बहुत पवित्र है, क्योंकि इसी महीने भगवान ने भगवद गीता बोली थी, मोक्षदा एकादशी के दिन 6 तारीख को। तो जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबिल बांटते हैं, तो प्रभुपाद जी से पूछा भक्तों ने, प्रभुपाद हम क्या करें, प्रभुपाद बोले तुम भी भगवद गीता बांटो और प्रत्येक व्यक्ति को दो, इस भौतिक समाज को बदलने के लिए एवं नरक में जाने से बचाने के लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कोटेशन में, सर्वप्रथम लोगों को शिक्षित करना होगा, सभी भद्र पुरुष मानवता की सेवा करना चाहते हैं परंतु वास्तव में सेवा क्या है उन्हें ज्ञाती नहीं है। अस्पताल खुलवाना, भूखे लोगों को भोजन देना, रेड क्रॉस, ये सब मात्र शरीर की सेवा है। आज भूखे को भोजन दोगे कल कौन देगा बताओ, लेकिन अगर उसका हाथ भगवान के हाथ में रख दोगे तो भोजन की कमी होगी, परमानेंट सॉल्यूशन। आज भोजन दोगे कल कौन देगा, समस्या जो की त्यों बनी रही, आज दवाई करोगे कल कौन करेगा, तो ऐसा कुछ परमानेंट इलाज कराओ कि वो हमेशा उसका फिर छुटकारा हो जाए। तो ये सब मात्र शरीर की सेवा है, मनुष्य की नहीं। मानव की सेवा करने का अर्थ है उन्हें ज्ञान प्रदान करना, यही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। इस प्रकार हम अपने साहित्य के माध्यम से, आप लोग चाहोगे कि नहीं चाहोगे बताओ, हर भाई के घर में एक एक गीता हो, बोलिए कितने लोग चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। आधे लोग अभी ऐसे ही कर रखे हैं ऐसे, और कहीं मेरे को बोल ना दें फिर 10 गीता ले जाओ, नहीं क्या हो जाएगा, 10 गीता ले जाओगे तो है डॉक्टर ले जाएगा नहीं तो पैसा। सही में हमने देख रखा है, जितना ज्यादा हम वो करते हैं डॉक्टरों को, अपना अपनी दवाइयों का बिल बनाइए जरा, कितना पैसा डॉक्टर ले जा रहा है हमारा, कितना संसार में हमारा लग जाता है, इसको ये देना है, उसको वो देना है, सब गिफ्ट में। लेकिन हम क्या 5 गीता 10 गीता 11 गीता 32 गीता 100 गीता बता रखा है, जो 108 गीता शतम पुस्तकम, जो 108 गीता जो है श्रद्धा और भक्ति के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में क्या करेगा, उसको वितरण करेगा, और मोक्षदा एकादशी के दिन तो फिर बात ही कुछ और है। उस व्यक्ति को बता रखा है वो फिर सीधे भगवान के धाम जाएगा और उसको विपुल यश मिलेगा, जो बड़ा रोग है उससे छुटकारा मिलेगा, और क्या होगा साथ में, उसकी पत्नी आज्ञाकारिणी हो जाएगी, ये तो सभी चाहेंगे। और अगर क्या बोलते हैं, पत्नियां लोग चाहते हैं पति आज्ञाकारिणी हो जाएं, तो अपने वो जो रख रखे ना इधर उधर पैसे, 9000 है इसके बस, केवल 9000 रुपए, केवल 9000 100 गीताओं के, समझ रहे नहीं, शतम पुस्तकम दानम। तो पति भी आज्ञाकारिणी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पत्नियां ही केवल, ये झूठी बात नहीं है, एकदम सत्य बात। ये प्रवचन सुन के एक व्यक्ति ने, पता है पटपटगंज में मैं प्रवचन दे रहा था, उसने क्या किया, वो मेरे पास आया, बोले प्रभु जी बड़ा दुखी हूं मैं, मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी क्या हो गया है, उसको उसके पति ने छोड़ दिया है, तलाक भी नहीं दे रहा है, और बच्चे लोग ऐसे ही हैं, इसका जो हमने दिया था सोना वोना सब 10-12 लाख वो भी उसने रख रखे हैं, बड़ा दुखी हूं, एक ही हमारी बेटी है घर में बैठी है, मैं बहुत दुखी हो गया हूं प्रभु जी, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हूं, क्या करूं। मैंने कहा आपने सुना है ना अभी अभी ये, आप 108 गीता जो है चाहे स्कूल में बांटो चाहे रिश्तेदारों को बांटो श्रद्धा से, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल भक्ति से आप बांटो। प्रभु जी वो एक महीने में मेरे पास आया, अगर आप चाहोगे तो मैं बुला सकता हूं उसको यहां पर, वो खुद बोलेगा आपको। वो बोलता है एक महीने में, बोलता है प्रभु जी पता नहीं क्या हुआ, हम कोर्ट केस भी जीत गए, उसने कोर्ट ने उससे बोला कि 15 लाख वापस दो, 15 लाख भी दिया है, तलाक भी हो गया है, और बच्चों को बच्चों के लिए 10,000 रुपये महीने देगा वो भी हो गया है, क्योंकि उसने गीता बांटी थी। ये ऐसा नहीं कि खाली केवल हम आपको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, अब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाए लाखों रुपए डॉक्टर को भरने को तैयार हैं हम, लेकिन 8,000 9,000 एक मोबाइल खो जाता है 20,000 का ले लेते हैं तुरंत, हमें थोड़ा सा गीता के लिए हम क्या सोचते हैं ओ कौन देगा। तो श्रद्धा विश्वास के बिना हम अगर करेंगे तो फिर नहीं होगा, लेकिन विश्वास से। ये भगवद गीता साधारण है, इसमें और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, पहले 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 6 से लेकर 15 तक आगे के 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा उदर है पेट, और 17वां 18वां अध्याय मेरे दो चरण कमल। तो आप किसी को भगवान दे रहे हो, कृष्ण को दे रहे हो, उसके घर दे रहे हो, समझ रहे हैं? और जब भगवान ही चले गए तो उसके रोग ताप जितने भी प्रकार के अमंगल हो रहे हैं, राहु शनि केतु, सब दूर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। आधे लोगों को लग रहा है ठीक है। मत करिए विश्वास, अखबारों में विश्वास कीजिए, अघोरी बाबा पघोरी बाबा पे विश्वास कीजिए, बड़ा ठीक हो जाएगा। यहां से जाना पड़े, बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, प्रभु जी सुखताल में एक बाबा है, यहां से सुखताल जाएगा हरिद्वार, वो 3 घंटे 4 घंटे वहां जाने में लगाएगा, 4 घंटे आने में, 2 घंटा भूत झाड़ने में वहां, वो केवल जैसे झाड़ से मारता है वो, और 2 घंटे लाइन में लगाएगा वो, और वहां पैसे भी देके आएगा उसको, अगर 30,000 बोले यज्ञ करना है तो 30,000 देके आएगा, लेकिन यहां शुद्ध वाणी भगवान की उसके लिए मति नहीं है। यही तो हमारा रोग है, अविश्वास। आप विश्वास से कृपा करके ज्यादा से ज्यादा गीताएं लेके जाइए, बांटिए, अपनी तरफ से बांटिए, न्यू ईयर गिफ्ट लोगों को दीजिए, ससुराल पक्ष वालों को दीजिए, अपने बेटे के पक्ष वालों को दीजिए जहां से उनकी उसकी पत्नी आई है, हजारों लोग हैं, और वैसे नहीं भी करते हैं तो अपने दोस्तों को, 10 दोस्तों को ऐसे मनाइए कि वे 11-11 गीता ले लें और उनसे पैसा ले लो। क्या माइंड में 10 दोस्त नहीं होंगे आपके? आपने बोला ही नहीं, बोलोगे तब तो लेंगे। हम पहले ही सोच देते नहीं लेगा, उसका तो विश्वास ही नहीं। आप बोलो तो सही, पैसे ले लो, उससे क्या प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से नहीं बांट सकते हो तो ठीक है। तो ये तब हो पाएगा जब हमारे भीतर दया होगी, हमारे हृदय में, तब हम ये कर पाएंगे। और दया कब आएगी? नामे रुचि, जब योगाभ्यास करेंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, माला करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, निसंदेह हृदय से दया प्रकट होती है। और नहीं तो दया कुछ नहीं, तो लगेगा ये खाली ठीक है, ये तो प्रवचन चलते रहते हैं, बस हो गया, इनने बोल दिया, बस हो गया, ऐसा लगेगा। नहीं तो ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपा करके अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें। प्रश्न है किसी का कोई? जी जी। क्यों नहीं देनी है भाई? किसी के हाथ में भी रखोगे? नहीं नहीं, फिर भी हम बताएंगे, क्योंकि उसकी श्रद्धा गलत जगह पे है, उसको हम तरीके से लाएंगे ना, उसके बोलेंगे भगवद गीता, फिर भी अगर नहीं रखना चाहे, आपको पता है एक सत घटना बता रहा हूं मैं, बैठिए बैठिए। वो मान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये गीता, प्रभुपाद जी बोलते किसी को दोगे नहीं भी पढ़ता है वो, कभी ना कभी पढ़ेगा, उसके यहां नौकर तब भी पढ़ता है। हमने एक जगह पंजाई बाग में एक घर में हम लोग गए, पंजाई बाग में जब थे हम, तो उस पश्चिम बिहार में ज्वालाहिरी, तो वो बोलता है, पहले तो घर में अंदर ही नहीं आने दिया, फिर बड़ी मुश्किल से अंदर आने दिया। अच्छा स्वामी जी जल्दी बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करना है? मुझे पता है आप क्या बोलते हैं, गीता के लिए आए होंगे ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, 10,000 रुपये ले लीजिए, ठीक है, 10,000 लाना जरा। वो 10,000 अंदर से लाई और ऐसा, और ऐसा है, मैंने कहा कुछ गीता रख लीजिए, आप बांट दीजिएगा। स्वामी जी आप कूड़े में फेंक दीजिए इसको, मुझे नहीं बांटना है। ये मैं सत्य घटना है, 10 दिन में फोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया उसका, पूरा पंचर हो गया एकदम सब। उसकी पत्नी सीधे, क्योंकि पत्नी ने सब सुना था, वो मंदिर आई, बोले प्रभु ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा प्रोग्राम रखो उसके लिए, गीता पाठ रख लो, कम से कम हम तो अच्छा ही रखेंगे ना, कि यहां तो दुष्ट बुद्धि है सबकी, सभी के अंदर दुष्ट बुद्धि है, हम लोग तो अच्छा ही करेंगे। तो गीता का अनादर करने वालों का ऐसा हाल भी होता है, समझ रहे हैं? हम भगवान का अनादर कर रहे हैं, गीता का अनादर का मतलब, वो फिल्मी कल्याण उपन्यास दिन भर टीवी चलते रहता है, नंगे नंगे सीन देखते रहते हैं, उससे उधार होगा किसी का? तो हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए, हम जैसे तैसे उसको दें, वो नहीं ले तो उसकी पत्नी के माध्यम से दो, जैसे भी उसके घर में गीता रखानी चाहिए, तभी तो धीरे धीरे सद्बुद्धि आएगी ना। भ्रष्ट बुद्धि हो गई है संसार में रह रह करके, लोग भ्रष्ट हो चुके हैं सब, बहुत दूर हो गए भगवान से। और कोई प्रश्न है? सच बताइए, शुरू शुरू में हम लोगों को भी क्या विश्वास था? बोलिए। नहीं था ना, कोई ज्यादा तजब्बू भी नहीं देते थे, ठीक है, मतलब मान लेते थे गीता है, हाँ ठीक है, लेकिन जब सुना, जब पढ़ा, जब ये, तब तो विश्वास आया ना। तो इसी प्रकार उसकी मति ज्यादा भ्रष्ट हुई है, फिर भी देंगे हम उसको। ठीक है, भक्त लोग ये वाला कष्ट उठाते हैं। ऐसे तो सभी अश्रद्धालु हैं, लगभग 50% अश्रद्धालु ही लोग हैं, तो क्या नाम ना दे उनको, दवाई क्या होगी उनके लिए फिर? और क्या चीज? क्या? हाँ, पहले 5 अध्याय भगवान बोलते मेरे मुख, क्योंकि भगवान विराट रूप भी करते हैं ना, अनेक मुख, भगवान चाहे तो पूरे विश्व में मुखी मुख कर सकते हैं, और अनेक हाथ अनेक भुजाएं, 5 अध्याय मुख हैं, 10 अध्याय आगे के भुजाएं हैं, 16वां उधर पेट मतलब, 17वां और 18वां 2 चरण कमल, ठीक है। हरे कृष्णा।